अलंकार विवेचन। केशव का दूसरा वर्ण्य विषय है अलंकार। अलंकार के उन्होंने दो वर्ग किए हैं, सामान्य और विशेष। विशेष के चार भेद हैं। सामान्य अलंकार को चारी प्रकार, प्रकाश, वर्ण, वर्ण्य, भू, राजश्री, भूषण, केशवदास, अर्थात वर्ण, वर्ण्य, भूश्री और राजश्री, ये वास्तव में वर्ण विषय हैं जिनका समावेश इनकी अपनी विषयगत चारुता के कारण काव्य को अलंकृत करता है। दूसरे प्रकार के अलंकार विशिष्टालंकार हैं जिनके अंतर्गत उपमा, रूपक आदि आते हैं। शुक्ल जी के शब्दों में वास्तविक अलंकार ये ही है क्योंकि इनका संबंध वर्णन शैली से है। हिंदी के विद्यार्थी के लिए यह वर्गीकरण कुछ नवीन सा लगता है, परंतु वास्तव में यह पूर्व ध्वनिकाल के प्राचीन आचार्यों की देन है जो कालांतर में काव्यशास्त्र के सिद्धांत स्थिर हो जाने पर अमान्य घोषित कर दिया गया था। भामह, दंडी और वामन आदि प्राचीनों ने अलंकारों को करण न मानकर कर्ता माना है, अर्थात उसे सौंदर्य का विधायक या एक प्रकार से सौंदर्य का पर्याय ही माना है। वामन ने स्पष्ट लिखा है, काव्यम ग्राहम अलंकारात् सौंदर्य मूलम कारः। काव्य की सार्थकता अलंकार से है और अलंकार का अर्थ है सौंदर्य। इस प्रकार ये आचार्य अलंकार और अलंकारी में भेद नहीं करते। काव्य का विषयगत सौंदर्य और वर्णन शैली की चारुता दोनों ही इनके अनुसार अलंकार है। इसीलिए दंडी ने अलंकार को काव्य शोभा का विधायक तत्व माना है, शोभा की वृद्धि करने वाला सहायक तत्व या साधन नहीं। इस प्रकार कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध सभी सब बातें अलंकार के अंतर्गत आ जाती हैं। ध्वनि की स्थापना के उपरांत मान्य आचार्य ने इस भ्रांति का निराकरण किया और अलंकारों को शैली के उपकरण मात्र माना। फिर भी कवि शिक्षा के ग्रंथों में इस परिपाटी का अनुसरण होता रहा। काव्य मीमांसा के उपरांत अमर की काव्य कल्प लता वृत्ति और तदुपरांत केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर में कवि समय के रूप, काव्य के वर्ण विषय, सामान्य अलंकार का विवेचन चलता रहा। केशव ने सिद्धांत दंडी और वामन आदि से और वर्णन प्रायः अमर और केशव मिश्र से ग्रहण किया। इस प्रकार उपर्युक्त विभाजन न तो केशव की अपनी उद्भावना है और न वह तर्क पुष्ट तथा मान्य है। वह काव्यशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था का द्योतक है, विकसित अवस्था का नहीं। विशिष्टालंकारों के विवेचन में केशव दंडी के पूर्णतया ऋणी हैं। उनके लक्षण और कहीं कहीं उदाहरण भी काव्यादर्श से लिए गए हैं। केशव के अलंकार वर्णन में दंडी के वर्णन से तीन चार प्रकार की भिन्नता है। कुछ अलंकारों के लक्षण दंडी से भिन्न हैं, कुछ अलंकारों का विपर्यय हो गया है। दंडी के कुछ भेद केशव ने स्वीकार नहीं किए और कुछ अतिरिक्त भेदों की उद्भावना की है, परंतु यह भिन्नता केशव के लिए शुभाशंसा की बात नहीं है क्योंकि लक्षणों की भिन्नता तथा अलंकारों का विपर्यय प्रायः भ्रांतिजन्य है। केशव दंडी का आशय ही नहीं समझे हैं। उदाहरण के लिए केशव ने अर्थांतर न्यास के उपभेदों के नाम तो दंडी के अनुसार रखे हैं, परंतु उनके लक्षण उदाहरण भिन्न हैं। स्पष्टतया ही केशव यहाँ दंडी का आशय नहीं समझे। इसी प्रकार केशव की अपहनुति मुकरी बन गई है। रूपक रूपक साधारण रूपक मात्र रह गया है। कई स्थानों पर केशव ने प्रतीयमान अर्थ को वास्तविक अर्थ ही मान लिया है, जिससे चमत्कार ही नष्ट हो गया है। जैसे आक्षेप में उन्होंने वास्तविक निषेध को ही अलंकार का लक्षण मान लिया है, या सभी प्रकार के आशीर्वादों में ही अलंकारत्व मान लिया है। दंडी के कुछ भेद केशव ने छोड़ दिए हैं। आक्षेप के 24 भेदों में से उन्होंने 12 ग्रहण किए हैं और उपमा के 32 भेदों में से 22 ग्रहण किए हैं, जिनमें अनेक के नाम आदि भी भिन्न हैं। परंतु यहाँ भी यह नहीं समझना चाहिए कि केशव ने अतिव्याप्ति, अव्याप्ति आदि को दूर करते हुए अलंकारों में व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह काट छांट की है। केशव ने यह ग्रहण और त्याग सर्वथा मनमाने ढंग से किया है। उसके पीछे न कोई तर्क है और न व्यवस्था। अतिरिक्त अलंकार भेदों के लिए भी केशव को कोई विशेष श्रेय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनमें से कुछ तो चमत्कारहीन होने के कारण अलंकार ही नहीं बन सके। जैसे संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा में औपम्य का ही अभाव है, अतएव उनको अलंकार ही नहीं माना जा सकता। गणना में तो किसी प्रकार का अलंकारत्व है ही नहीं। यदि उसे अलंकार माना भी जाए तो भी वह सामान्य अलंकार ही रहेगा, और वास्तव में काव्य कल्प लता वृत्ति और अलंकार शेखर में उसका इसी रूप में वर्णन भी है। दोष विवेचन। केशव ने दोषों के दो वर्ग किए हैं। प्रमुख वर्ग के अंतर्गत उन्होंने 5 दोषों की गणना की है। अंध बधिर अरुपंगु तजी नगन मृतक मति शुद्ध। अंध अर्थात काव्य परंपरा के विरुद्ध, बधिर जहाँ परस्पर विरोधी शब्दों का प्रयोग हो, पंगु छंद विरुद्ध, नग्न अर्थात निरलंकार और मृतक जिसमें अर्थ का ही अभाव हो। केशव के इन दोषों का आधार क्या है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संभव है कि वे उनकी अपनी कल्पना ही हो अथवा किसी अप्रसिद्ध कवि शिक्षा ग्रंथ से उद्धृत हो, परंतु इनकी स्थिति विशेष प्रमाणिक नहीं है। उदाहरण के लिए नग्न दोष जहाँ किसी स्वीकृत अलंकार का भाव हो अपने आप में कोई दोष नहीं है, क्योंकि गंभीर आचार्यों ने अनलंकृति पुनः क्वापी स्पष्ट ही कह दिया है। और वास्तव में केशव ने जो छंद उद्धृत किया है वह दोषपूर्ण अथवा त्याज्य छंद न होकर सरस छंद है। उसमें उक्ति चमत्कार का भी अभाव नहीं है, चाहे वह चमत्कार परिगणित अलंकारों के अंतर्गत भले ही न आता हो। इसी प्रकार मृतक दोष भी असिद्ध सा ही है, क्योंकि काव्य दोष केवल काव्य में हो सकता है और अर्थहीन काव्य को तो भाषा भी नहीं कहा जा सकता। काव्य की बात तो दूर ही रही। आगे चलकर केशव ने अपार्थ दोष में इसकी पुनरावृत्ति की है, यद्यपि उस प्रसंग में उदाहरित छंद सर्वथा निरर्थक नहीं। इन पांच दोषों के अतिरिक्त केशव ने अन्य दोष कहकर दस और काव्य दोषों का वर्णन किया है। ये प्रायः प्रचलित दोष हैं जो केशव ने डंडी से लिए हैं। यहाँ भी उन्होंने अनुवाद में असावधानी अथवा अर्थ ग्रहण में त्रुटि की है। अपार्थ के लक्षण में डंडी का कहना है, उन्मत्त मत बालाना मुक्ते मुक्तरेण्यत्र दुस्यति, अर्थात उन्मत्त व्यक्तियों और मत बालकों की उक्तियों में निरर्थक शब्दावली का प्रयोग दोष नहीं रह जाता। परंतु केशव ने डंडी के इस सूक्ष्म विवेचना को ग्रहण न करते हुए अत्यंत स्थूल रूप में यह कह दिया है कि मतवारो उन्मत्त शिशु के से वचन बखानु, अर्थात जहाँ शिशु अथवा उन्मत्त व्यक्ति के से वचन का प्रयोग हो वहाँ अपार्थ दोष होता है। अन्य प्रसंग। इन प्रमुख प्रसंगों के अतिरिक्त केशव ने वृत्तियों का और थोड़ा सा पिंगल का भी विवेचन किया है। कैसे कि सात्वती आदि वृत्तियों का संबंध नाटक से ही है, अतएव काव्यशास्त्र में उनको कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। केशव ने रसिक प्रिया में भरत के नाट्य शास्त्र से पर्याप्त सहायता ली है, अतएव उसके सिलसिले में उन्होंने अंत में वृत्तियों का विवेचन भी कर दिया है। पिंगल के अंतर्गत कवि प्रिया का गणागण्य विचार आ सकता है, यद्यपि वह अगण दोषों के ही प्रसंग में किया गया है, परंतु विवेचन की दृष्टि से वह स्वतंत्र हो गया है। काव्य सिद्धांत और काव्य संप्रदाय। केशव को हिंदी जगत अलंकारवादी मान चुका है और साधारणतः उनका एक दोहा ही प्रस्तुत प्रसंग से में उद्धृत कर स्थापना की सिद्धि भी कर दी जाती है। परंतु केशव ने सामान्य काव्य सिद्धांत के विषय में रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया दोनों में कुछ निश्चित धारणाएं व्यक्त की हैं। उनके मत से कवि तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरिरसलीन, मध्य मानत मानुसनी, दोसनी अधम प्रवीण। परमार्थ परक काव्य के प्रणेता हरिरस में लीन उत्तम कवि कहलाते हैं, अर्थात केशव के अनुसार परमार्थ अथवा धर्म और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थों की सिद्धि ही काव्य का चरम लक्ष्य है। मानव जीवन के कवि जो मानव चरित्र का गुणगान कर ऐहिक आनंद को काव्य की सिद्धि मानते हैं, मध्यम कोटि के कवि हैं और परमानंद तथा लौकिक आनंद अर्थात आत्मा और मन दोनों के आनंद से वंचित दोषपूर्ण कवि कर्म चारी अधम कवि हैं। यहाँ केशव ने रस शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया है। कवि की सबसे बड़ी शक्ति है वाणी, जिसके बिना वह आनंद का दान नहीं कर सकता। ज्यों बिन डीट न सोभिए लोचन लोल विशाल, त्यों ही केशव सकल कवि बिन बानी न रसाल। कवि की रसालता सरसता का मूल उपकरण है उसकी वाणी। ताते रुचि सुचि सोची पची कीजे सरस कवित्त, केशव श्याम सुजान को सुनत होई वश्चित। यहाँ भी सरस कवित अथवा कवित की सरसता पर ही बल दिया गया है और श्याम सुजान अर्थात भगवान के प्रसादन को उसकी सिद्धि माना गया है। इस प्रकार केशव ने रस का तिरस्कार न कर उसके महत्व को पूर्णतया स्वीकार किया है। स्वयं अनेक दोषों के अपराधी होकर भी केशव ने दोष को कविता के लिए असहाय माना है। राजत रंच न दोष युत कविता बनिता मित्र, बुंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। इसलिए सबसे पूर्व उन्होंने दोषों का निरूपण और कवि असह प्रार्थी को उनके विरुद्ध सावधान कर दिया है। प्रौढ़ावस्था तक पहुंचकर केशव पर अलंकार का जादू चढ़ गया। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि यह कवि, जैसा कि रामचंद्रिका आदि के अनेक छंदों से स्पष्ट है, अपने वंश की परंपरा और अपने पांडित्य के प्रति अत्यधिक सचेष्ट था। पांडित्य का धीरे धीरे उस पर आतंक छा गया कि अर्थ गौरव के बोझ से मन की सरस्वती दब गई। पांडित्य और अर्थ गौरव कृति साध्य है और उधर अलंकार भी अपेक्षाकृत अधिक कृति साध्य ही है, इसलिए केशव को पांडित्य और अर्थ गौरव की स्पृहा ने ही अलंकार की ओर आकृष्ट किया, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उनका सिद्धांत वाक, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, और रामचंद्रिका में उनका भयंकर अलंकार मोह उनकी अलंकारवादिता को असंदिग्ध रूप से प्रमाणित कर देता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि केशव ने आरंभ में रसवाद के अंतर्गत श्रृंगारवाद को मान्यता दी और रसिक प्रिया के द्वारा हिंदी में उसका प्रवर्तन किया। यह उत्तर ध्वनिकालीन परंपरा थी, जब रसवाद अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा के उपरांत नायिका भेद के ग्रंथों में श्रृंगारवाद में ही सीमित हो गया था। प्रौढ़ीकाल में केशव की प्रवृत्ति स्वभावतः सरसता से बौद्धिकता की ओर होने लगी। बौद्धिकता के दो रूप, बौद्धिकता के दो रूप संभव थे, विचार प्रधान काव्य, अलंकार प्रधान काव्य। केशव ने दोनों को ही ग्रहण किया है और चूंकि दरबार में रहकर उनका लगाव अलंकार से अधिक था, इसलिए अलंकार का जादू उनके सिर पर और ज्यादा चढ़कर बोलने लगा। अलंकार की परंपरा भामह, डंडी, वामन, उद्भट आदि की ध्वनि पूर्व परंपरा थी, जिसके अनुसार काव्य का समस्त सौंदर्य ही अलंकार के आश्रित था, पर वर्ण, जब वर्ण विषय और वर्णन शैली दोनों ही अलंकार के अंतर्गत आते थे। मूल्यांकन, रीति शास्त्र में केशव का स्थान। इस पृष्ठभूमि का निर्माण कर लेने के उपरांत अब केशव के आचार्यत्व का मूल्यांकन सहज ही किया जा सकता है। भारतीय काव्यशास्त्र में तीन प्रकार के आचार्य हुए। पहली श्रेणी में भरत, भामह, डंडी, वामन, आनंदवर्धन, अभिनव और कुंतक आदि ऐसे आचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्यशास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार कर काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि केशव के लिए इस श्रेणी में तो कोई स्थान ही नहीं है। उन्होंने न किसी मौलिक सिद्धांत की सृष्टि की और न किसी नवीन काव्य पंथ का प्रवर्तन किया। यह सब केशव की सामर्थ्य से बाहर था। दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के सर्वांग का मौलिक व्याख्यान किया है। इन आचार्यों ने काव्य के मूलभूत सिद्धांतों की सूक्ष्म गहन व्याख्या करते हुए उन्हें व्यवस्थित रूप दिया है। उद्भट, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि व्याख्याता आचार्य इस वर्ग के विभूषण हैं। केशव इस गौरव के भी अधिकारी नहीं है। इसके लिए काव्य के मूलभूत सिद्धांतों के तात्विक ज्ञान, उनके निभ्रांत एवं स्पष्ट विवेचन व्याख्यान तथा सुस्थिर व्यवस्थापन शक्ति की अपेक्षा रहती है। जैसा कि हम अभी निर्देश कर चुके हैं, केशव में इन गुणों का प्रायः अभाव ही है। न उनका ज्ञान ही निभ्रांत है और न विवेचन ही स्थिर और स्पष्ट है। इस श्रेणी के आचार्यों का सबसे बड़ा गुण है व्यवस्था, जिसका केशव में एकांत अभाव है। तीसरी श्रेणी कवि शिक्षकों की है, जिनका कार्य होता है विद्यार्थियों तथा रसिकों की काव्य शिक्षा के निमित्त वर्णनात्मक ढंग से आवश्यक सामग्री का संचय कर सरल सुबोध पुस्तक प्रस्तुत करना। सामान्यतः भारतीय काव्यशास्त्र की व्यापक भूमिका में विचार करने से केशव कवि शिक्षक रूप में ही सामने आते हैं, जिन्होंने काव्य के दो प्रमुख अंगों का, रस तथा अलंकार का, साधारण प्रतिभा और ज्ञान वाले विद्यार्थियों तथा रसिक जनों के लिए विस्तार से वर्णन किया है। समुझे बाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करे क्षमियहु कवि अपराध। यहाँ केशव ने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। एक तो वे काव्य वर्णन की सुबोध शिक्षा देना चाहते हैं, सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण की नहीं, और दूसरे उनके ग्रंथ साधारण शिक्षा संस्कार वाले विद्यार्थियों और रसिकों के लिए हैं। पर यदि हम अपनी दृष्टि को थोड़ा सीमित कर लें और हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशव के आचार्यत्व का विचार करें, तो केशव का महत्व असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्यशास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी के उस व्यापक काव्य युग के प्रवर्तन का श्रेय न केशव के किसी पूर्ववर्ती रीति कवि को दिया जा सकता है और न परवर्ती को। कृपाराम का क्षेत्र अत्यंत संकुचित है और व्यक्तित्व बहुत ही साधारण। चिंतामणि को भी यह गौरव देना अन्याय है, क्योंकि यह केवल एक संयोग था कि उनके उपरांत रीति काव्य की धारा अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित हो चली। हिंदी की परवर्ती कवियों ने, देव, दास आदि सभी धुरंधर कवियों ने केशव को ही आचार्य रूप में श्रद्धांजलि दी है। चिंतामणि का नाम तक भी किसी ने नहीं लिया। केशव ने ही हिंदी में सबसे पहले सचेष्ट रूप से संस्कृत की पूर्व ध्वनि और उत्तर ध्वनि परंपराओं को अवतरित किया और अपने पांडित्य गुरु व्यक्तित्व के बल पर हिंदी काव्य में शास्त्रीय पद्धति की प्रतिष्ठा की। इसमें संदेह नहीं कि उनका अलंकार सिद्धांत बाद में मान्य नहीं हुआ, उसकी भ्रांतियां अत्यंत स्पष्ट और मुखर हैं। इसमें भी संदेह नहीं कि उन्होंने हिंदी के काव्य साहित्य को आधार मानते हुए सिद्धांत व्यवस्था न कर प्रायः संस्कृत का ही अनुवाद किया है। हमें यह भी स्वीकार्य है कि स्वयं हिंदी के भी कतिपय परवर्ती आचार्यों, कुलपति, श्रीपति, दास आदि का विवेचन केशव के विवेचन की अपेक्षा अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित है। फिर भी केशव की प्रतिभा उनमें से किसी में नहीं थी। भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और प्रतिभा तथा पांडित्य से परिपुष्ट यह व्यक्तित्व था केशव का। यहाँ केशव का आचार्यत्व शीर्षक समाप्त होता है।